नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने अतिवृष्टि से प्रभावित 6 जिलों के 7,63,000 किसानों के लिए कृषि आदान अनुदान मंजूर किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, सरकार देश की आंतरिक और सीमा सुरक्षा के लिए जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। राजस्थान को अक्षय ऊर्जा के लिए एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुंबई में होगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने अतिवृष्टि से प्रभावित 7,63,000 किसानों के लिए कृषि आदान अनुदान स्वीकृत किया है। यह अनुदान खरीफ फसल वर्ष 2025 के लिए 6 जिलों की 43 तहसीलों के किसानों को दिया जाएगा। गौरतलब है कि इन जिलों में 3,777 गांवों को गिरदावरी के आधार पर आपदा प्रभावित घोषित किया गया था। इनमें झालावाड़, धौलपुर, बूंदी, भरतपुर, डीग और टोंक के गांव शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा 1,597 गांव झालावाड़ जिले के हैं। वहीं अन्य जिलों में भी अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि सरकार देश की आंतरिक और सीमा सुरक्षा के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा से छेड़छाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह को बख्शा नहीं जाएगा। श्री शेखावत कल जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश से हर तरह के आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा को लेकर के किसी भी तरह की चूक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। जो कोई भी ऐसी संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त होगा, देश की सुरक्षा और सुरक्षा के मानकों के साथ में छेड़छाड़ करने का किसी भी तरह से प्रयास करेगा, वो चाहे पाताल में भी छुपा होगा तो उसको ढूंढ करके उसको किए के अंजाम की सजा भुगतनी पड़े, इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मैं इस नेटवर्क को क्रैक करने वाले के पीछे जुड़े सभी अधिकारियों को इसके लिए बधाई देता हूं।
श्री शेखावत ने कहा कि भारत की संस्कृति लोक आस्था, पर्यावरण संतुलन और सामुदायिकता की प्रतीक है। उन्होंने ये भी बताया कि इस साल यूनेस्को के समक्ष छठ पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किए जाने का भी प्रस्ताव भेजा गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि डिजिटल क्रांति के इस दौर में साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए खास तौर पर सतर्क रहना चाहिए। श्री मल्होत्रा कल उदयपुर में आरबीआई की ओर से आयोजित आपकी पूंजी आपका अधिकार कार्यक्रम में बोल रहे थे। श्री मल्होत्रा ने कहा कि डिजिटल साक्षरता के साथ डिजिटल सुरक्षा बहुत जरूरी है। किसी भी अनजान कॉल या लिंक पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के तहत बैंक खातों में जमा बिना दावे वाली राशियों को उनके सही वारिसों तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बारां जिले के अंता विधानसभा उपचुनाव में होम वोटिंग की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। इसके लिए प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों की रवानगी की गई। जिला परिषद सभागार में आयोजित ट्रेनिंग में मतदान अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष तथा पारदर्शी चुनाव के लिए दिशा निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि होम वोटिंग के तहत दिव्यांग मतदाताओं और 85 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग घर बैठे वोट डाल सकेंगे। कोटा में नेशनल कैपेबल समिट एनसीएस का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत देश भर के स्कूल और कॉलेजों के करीब 450 विद्यार्थी जुटे हैं। इन्होंने यूएनओ और विभिन्न देशों की संसद की तर्ज पर सदन चलाने का अनुभव लिया। इस समिट का उद्देश्य विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, संवाद कौशल और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की समझ विकसित करना है। कल से शुरू हुई ये समिट आज सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ सम्पन्न होगी।
ये बच्चे प्रधानमंत्री, लोक लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष विपक्ष के नेता समेत सांसदों की भूमिका निभा रहे हैं। इस दौरान वन नेशन वन इलेक्शन मुद्दे पर तर्क वितर्क हुए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अलग अलग देशों की पॉलिसी पर भी चर्चा हुई। समिट का उद्देश्य विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता संवाद कौशल और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की समझ विकसित करना और पढ़ाई के तनाव से मुक्त होना है। समिट का पूरा प्रबंधन बच्चे संभाल रहे हैं। आज समिट का समापन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ होगा। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राजस्थान को चेन्नई में एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चेन्नई में आयोजित विंडर्जी इंडिया 2025 सम्मेलन में केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह पुरस्कार प्रदान किया। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक राजीव सिंह ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि राज्य में अक्षय ऊर्जा का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राजस्थान को ग्रीन एनर्जी का वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 आयोजित की जा रही है। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक होने वाली इस परीक्षा के लिए प्रदेशभर में 1500 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। 850 पदों पर होने वाली इस भर्ती के लिए 500,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया है। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान रोडवेज की ओर से परीक्षार्थियों को निःशुल्क बस सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदलता नजर आ रहा है। लालिना और पश्चिमी विक्षोभ के असर से पिछले साल के मुकाबले नवंबर महीने की ज्यादा सर्द रहने का अंदेशा है। कल से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार हैं। इसके असर से जोधपुर और उदयपुर संभाग के अलावा लगभग सभी संभागों में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। मौसम केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार इसके बाद तापमान में गिरावट के आसार हैं।
अगले 24 घंटों में उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ भागों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है और इस सिस्टम के असर से 3 और 4 नवंबर को विशेष रूप से दक्षिणी राजस्थान यानी जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, इसके अलावा अजमेर, जयपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 5 नवंबर से राज्य के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा और उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है।
प्रदेश के पर्यटन स्थल सैलानियों की अच्छी आवक से गुलजार हैं। पर्यटकों को बेहतर यात्रा अनुभव हो इसके लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में स्वर्ण नगरी जैसलमेर में पुलिस और जिला प्रशासन ने ऑपरेशन वेलकम का नवाचार किया है। पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक कमलेश्वर सिंह ने बताया कि इसके तहत शहर में टूरिस्ट हेल्प बूथ बनाए गए हैं।
हम पुलिस प्रशासन के द्वारा लपकों को ऊपर और सख्ती की जा रही है ताकि जो सीजन है उसके अंदर पर्यटकों को कोई असुविधा ना हो। साथ ही जो सम क्षेत्र में फर्जी कैंपिंग साइट्स है उनके ऊपर भी भौतिक सत्यापन करवाया जा चुका है थाना अधिकारी के द्वारा और जो लिस्ट प्राप्त हुई है उसको भी बुकिंग वेबसाइट्स को हमारे द्वारा भिजवाया जा चुका है ताकि वो जो फेक कैंप्स और फेक साइट्स हैं उनको हटाने की कार्रवाई शुरू की जाए। और साथ ही इस बार जैसे पर्यटन सीजन के अंदर कई नई चीजें भी ऐड होती जा रही है टूरिस्ट सर्किट को और इम्प्रूव करने के लिए और कई ऐसे हिडन डेस्टिनेशन है, कई टेम्पल्स है जिसके बारे में पर्यटकों को नहीं पता होता है तो उसको और ज्यादा कैसे मार्केटिंग की जाए उस दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। टूरिस्ट के साथ अगर कोई शिकायत होती है तो उसके लिए टूरिस्ट के लिए कोई एक वन स्टॉप सेंटर नहीं था तो उसके लिए पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर जिला प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जिसका कंट्रोल रूम भी बनाया है तो वो हेल्पलाइन नंबर 24/7 चालू रहेगा।
आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से होने वाले इस मैच में भारतीय टीम चैंपियनशिप जीतने के इरादे से उतरेगी। इससे आधे घंटे पहले टॉस होगा। भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। इस खिताबी जंग में भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत कौर के पास रहेगी वहीं दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी लॉरा वॉल वॉट करेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने अतिवृष्टि से प्रभावित 6 जिलों के 7,63,000 किसानों के लिए कृषि आदान अनुदान मंजूर किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, सरकार देश की आंतरिक और सीमा सुरक्षा के लिए जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। राजस्थान को अक्षय ऊर्जा के लिए एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ICC महिला वन डे क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुंबई में होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।